हरे कृष्णा। कथानक को आगे बढ़ाते हुए दशरथ राजा का अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ और श्रृंगी राजा श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में वशिष्ठ मुनि के उत्कृष्ट व्यवस्थापन में आखिर पुत्र कामिष्टि यज्ञ का आरंभ हुआ। इस यज्ञ की वेदी गरुड़ के आकार की थी। इसका कारण ये था कि पुत्र न होने के विष को दशरथ राजा अनुभव कर रहे थे और इस समय जिस प्रकार से देवताओं को संकट दूर करने के लिए गरुड़ जी अमृत लेकर आए थे, उन्हें पुत्र रूपी अमृत की आवश्यकता थी, तो ये गरुड़ जी ही कर सकते थे। इसलिए गरुड़ जी की स्मृति में यज्ञ वेदी गरुड़ जी के आकार में बनाई गई। इस यज्ञ की भव्यता इतनी सुंदर थी कि अग्नि की ज्वालाएं आकाश तक पहुंच रही थी। सारा वातावरण इस पवित्र यज्ञ के होने से पवित्र हो गया था, शुचित हो गया था। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आकाश से, स्वर्ग लोकों से उतरकर अपनी अपनी आहुतियां, अपने अपनी हिस्से लेने के लिए नीचे उतर रहे थे। उनके हृदय में परम आनंद का अनुभव हो रहा था। सब लोग इस यज्ञ की पवित्रता को, शुचि को देखकर बड़े प्रसन्न थे। लेकिन एक तरफ हृदय में आनंद उमड़ रहा था, एक तरफ कंस रावण का भय हृदय में भर गया था। आनंद से भरे हुए हृदय से आहुति स्वीकार तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी रावण के द्वारा जो क्रूर कृत्य किए गए जा रहे थे, रावण के द्वारा जो उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, उससे ये सारे देवता भयभीत थे और चिंतित भी थे, और उन्होंने अपनी चिंताओं को ब्रह्मदेव के पास प्रकट भी किया था। आइए कुछ देर हम इस कथानक के पार्श्वभूमि पर चलें, बड़े पुराने इतिहास को दोहराएं। एक समय वैकुंठ के द्वार पर वैकुंठाधिपति श्री विष्णु भगवान का दर्शन करने के लिए चार कुमार आए। ये चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी का जन्म होने के पश्चात ये चार कुमार जन्म लेते हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। अपनी आयु को उन्होंने अपने योग बल से केवल 4 साल ही बना के रखा था। हजारों लाखों वर्ष के वृद्ध थे वो, लेकिन फिर भी उन्हें युवा अवस्था को प्राप्त करके काम वासना में लिप्त नहीं होना था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अपने शरीर को 4 साल का ही बना के रखे, और 4 साल के बालक को अगर नग्न घूमना है तो कोई संकोच नहीं, कोई आपत्ति भी नहीं है। तो ये चार कुमार नग्न अवस्था में वैकुंठ के द्वार पर आए और उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश करना चाहा। उस समय वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय वहां पर खड़े थे। अपने कर्तव्य को निभाते हुए उन्होंने इन चार बालकों को रोका कि ऐसे छोटे छोटे नग्न, निरागस, निष्पाप छोटे छोटे बालकों का वैकुंठ में क्या काम है। जैसे ही उनको रोक दिया गया, इन चार कुमारों ने उनको शाप दे दिया कि आपको पृथ्वी पर जन्म लेना होगा क्योंकि आपने हमको रोका है। फिर पहले तो कहा गया कि आपको 7 बार पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, भक्त रूप में या भक्ति के अनुकूल जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जय विजय बड़े दुखी थे। वैकुंठ का निवास छोड़कर पृथ्वी पर भक्त के और एक सद्गृहस्थ के रूप में जाने के लिए भी वो तैयार नहीं थे, क्योंकि पृथ्वी का जीवन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन कष्टों से युक्त होता है। आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कष्टों से युक्त होता है। इसलिए वो वैकुंठ के जीवन के प्रति सामने इन 7 जीवनों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर ये तय हुआ कि आपको 3 जन्म प्राप्त हो गए, लेकिन आपको राक्षस बनकर पृथ्वी पर आना होगा। और उन्होंने 3 बार, 7 बार के बदले में 3 बार राक्षस बनना पसंद किया। हमारे लिए बड़ी सीख है इसके अंदर। हम सब लोग इस पृथ्वी में बड़े आराम से जी रहे हैं, हमें यहां पर जीने में कोई आपत्ति नहीं है। जन्म, मृत्यु तो यहां पर हो ही रहे हैं, बीमारियां आए दिन दिखाई पड़ती हैं, और सब लोग इस जीवन को जीते हुए हर दिन, हर क्षण वृद्ध होते जा रहे हैं। मन के द्वारा कष्ट हैं, अन्य जीवों के द्वारा कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, कभी अकाल, कभी अतिवृष्टि, कभी कड़ी धूप, कभी ठंड, कभी भूकंप, कभी आतंक। इसके बावजूद भी हम सब यहां पर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम आनंदी हैं, सुखी हैं। लेकिन जब स्वर्ग के लोग और वैकुंठ निवासी हमें देखते हैं तो जैसे हम किसी शुकर को देखते हैं, उस प्रकार से वो हमें ऊपर से देखते हैं और किसी भी कीमत पर हमारे स्थिति में आना नहीं चाहते हैं। जैसे हम किसी शुकर को गटर में देखते हैं तो उसकी गंदी स्थिति को देखकर बड़ी घृणा करते हैं, वैसे देवता लोग और वैकुंठवासी लोग हमें देखकर घृणा करते हैं, हमारे दुर्गंधिजनक शरीर को देखकर घृणा करते हैं, इसलिए आना नहीं चाहते हैं। इसलिए यहां पर शाप मिला भी है तो कम से कम समय बिताया जाए, इसलिए राक्षस का भी जन्म चलेगा लेकिन यहां पर कम से कम जन्म, कम से कम समय बिताया जाए। इस भाव से उन्होंने 3 बार राक्षस बनने का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया। पहली बार जय और विजय जो भगवान के परम भक्त हैं वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, जिसका श्रीमद् भागवत में अलग अलग स्कंदों में वर्णन आता है। दूसरी बार ये दोनों रावण और कुंभकर्ण बने, यानी कि त्रेता युग में रामायण में रामलीला में इनका सहयोग हुआ। द्वापर में ये शिशुपाल और दंतवक्र बने। इसका अर्थ होता है कि द्वापर में जब श्री कृष्ण भगवान आए तब उनकी लीला में इनका सहभाग हुआ, और कलयुग में जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण भक्त रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, हरिनाम संकीर्तन किया, तो फिर दोनों ये दो जो जय विजय थे वो जगाई और मधाई के रूप में आए, फिर इनका उद्धार हुआ। इसके बीच में एक विशेषता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वैकुंठ में भगवान की जो वीर रस की जरूरत है उसकी तृप्ति नहीं होती। भगवान के धाम में कोई किसी को बैर तो करता नहीं है, कोई द्वेष तो होता नहीं है, तो भगवान के जो वीर रस की जिजीविषा है, जो युद्ध करने की जिजीविषा है, जो सही वास्तव रूप में युद्ध करने की जो इच्छा है वो वहां पर पूर्ण नहीं होती है, तो वो अपने ही भक्तों को लीला के माध्यम से पृथ्वी पर राक्षसों के रूप में भेजते हैं और फिर वास्तविक रूप में द्वेष, त्वेष, उत्साह और वीर रस के साथ में उनके साथ में युद्ध खेलते हैं, उनका वध करते हैं और अपनी वीर रस की पूर्ति कर लेते हैं। इसीलिए जय विजय ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन भगवान को पृथ्वी तल पर जाकर इस अनोखे रस का अनुभव करने की इच्छा होती रहती है, होती थी, हो भी रहती है, इसलिए भगवान ने जय विजय का निमित्त बनाकर अनेकों बार लीला किया। तो ये जय विजय का आख्यान श्रीमद् भागवत में आता है और जिससे हम समझ सकते हैं कि रावण और कुंभकर्ण कौन थे। इसके आगे हम देखते हैं कि रावण का पूर्व इतिहास क्या है। सुमाली नाम का राक्षस था, उसको एक कन्या थी। अभी हम शास्त्रों में पढ़ते हैं अनादिकाल से देवासुर संग्राम, देवासुर द्वेष, देवासुर कलह, ये होते ही रहता है। ऊपर के लोकों में देवता लोग रहते हैं, बीच में पृथ्वी लोग हैं और नीचे के लोगों में राक्षस लोग रहते हैं, देव, दानव, दैत्य, राक्षस, और पृथ्वी से भी अधिक सुविधाएं और कुशलताएं और सिद्धियां इन राक्षस लोकों में उपलब्ध हैं। स्वर्ग जैसे आनंद वहां पर उपलब्ध है तो फिर उसको नरक लोक क्यों कहा गया है? इसका कारण यह है कि सब सारा ऐश्वर्य होने के बावजूद भी इन लोकों में रहने वाले लोग जो होते हैं भगवान से प्रतिकूल होते हैं, भगवान से विमुख होते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान से संघर्ष करते हैं, भगवान से प्रतिस्पर्धा करते हैं, भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं। इसलिए ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी इनको निचली योनि वाले लोग कहा गया है। स्वर्ग लोक में भी उतने ऐश्वर्य होते हैं लेकिन स्वर्ग लोक में रहने वाले सभी देवता लोग भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के लिए अनुकूल होते हैं, भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं, सद्गुणी होते हैं, यही फर्क है। तो सुमाली भी राक्षस था यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि देवताओं पर शाश्वत नियंत्रण प्राप्त हो जाए, शाश्वत सार्वभौमत्व प्राप्त हो जाए, ऐसी उसकी इच्छा थी। तो उसके मन में एक ऐसा कटु विचार आया कि मैं मेरी कन्या जिसका नाम केकशी है उसका विवाह किसी ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण से करूंगा, तपस्वी ब्राह्मण से करूंगा। तो ब्राह्मण के सारे जो गुण हैं, ज्ञान है, तपस्या है, सद्गुण है, विद्या है, ये सब हमारे राक्षस वंश के बल के साथ, युद्ध कौशल के साथ, वीरता के साथ हमारे पुत्रों में प्रकट हो जाएगा। अर्थात हमारे पुत्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेंगे और राक्षस के गुणों को भी प्राप्त करेंगे। इस तरह से वो शाश्वत नियंत्रण, राज्य, आधिपत्य प्राप्त करेंगे। इस विचार से उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि विश्रवसा, या उनका नाम विश्रवा भी है, ऐसे ब्राह्मण विश्रवा से अपनी कन्या केकशी का विवाह किया। यथावकाश जब विवाह हुआ तो विश्रवा ब्राह्मण देव को यह पता चला कि इस विवाह के पीछे कैसी कटु भावना है, कैसा दुरुद्देश्य है, तो बड़े क्रोधित हो गए। वो अपने पिता की जो योजना थी उससे केकशी पूरी तरह संयमी नहीं थी, केकशी को वो मान्य नहीं था, वो सहमत नहीं थी, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, इस उद्देश्य को ना मानते हुए भी वो विवाह करती है। लेकिन यथावकाश जो भी कटु होता है वो छुपता नहीं है। समय के प्रभाव से जो भी छुपाने का हम प्रयास करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वो समय उसको प्रकट कर देता है। तो विश्रवा को पता चलता है कि इस उद्देश्य से मुझसे विवाह किया गया है, तो वो शाप देते हैं कि तुम्हें भयंकर रक्त पिपासु राक्षसों का पुत्र के रूप में प्राप्ति होगी। तो वो फूट फूट कर रोने लगी कि मैंने ऐसा तो कभी उद्देश्य मन में रखा नहीं था, मैं बड़ बेबस थी मेरे पिताजी की इच्छा के सामने, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और कुछ वरदान दे दीजिए। तो उसकी सरल हृदयता और दयनीय अवस्था को देखकर उसके पति ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा तीसरा पुत्र जो है वो वैष्णव होगा, वो भगवान का भक्त होगा, और ये दो लोग जो राक्षस वंश का, हमारे राक्षसों के वंश का जो नाश करेंगे उसको वो अकेला बचाएगा और राक्षस वंश को बनाए रखेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केकशी फिर बड़े ही भयंकर राक्षस को जन्म देती है, जिसके जन्म होते ही पूरे सृष्टि में, पूरे 14 भुवनों में हाहाकार मच गया। सब जगह भूकंप हुए, तूफान आए, चक्री तूफान आए, उल्कापात हुआ, भयंकर गर्जनाएं आकाश में हुई, डर पैदा हो गया सबके मन में, अंधकार पैदा हो गया। उसका नाम था रावण, और रावण का नाम का यह अर्थ है कि दूसरों को रुलाना और दूसरों को रुलाने में बहुत आनंद का अनुभव करना। जैसे इसका जन्म हुआ उसी समय सब लोगों को रोना आया, बड़े दुखी होकर सब रोने लगे। तो रावण के आने वाले कृत्यों का एक तरह से वो प्रमाण दे रहे थे। उसको 10 शीश थे, 10 सर और 20 हाथ थे, दशानन दशग्रीव उसका नाम पड़ा, भयंकर शक्तिशाली था वो। फिर दूसरा पुत्र हुआ, उसका नाम कुंभकर्ण। उस नाम का अर्थ क्या था? उसके कान जो थे वो कुंभ की तरह विशाल थे, और वो जन्म होते ही जिस गति से उसका शरीर बढ़ा, महाकाय महाविशाल शरीर बना उसका, और इतनी प्रचंड भूख उसको हुआ करती थी कि वो दिन भर खाते रहता था। उसके सामने जो आता था, जो जीव आता था उसको वो खा जाता था। उसके केवल होने से सब जीवों को कष्ट होने लगा, इतनी भयंकर उसकी स्थिति थी। अब कान जिसके विशाल होते हैं वो एक तरह से भाग्यवान मानते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति जितना सुनेगा उससे अधिक ये व्यक्ति सुनेगा बड़े कानों से, और जितना अधिक सुनेगा उतना अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा, अधिक ज्ञानी बनेगा। तो वैसे तो कुंभकर्ण होना एक तरह से भाग्यवान बात है, भाग्य की बात है, लेकिन ये व्यक्ति के लिए ये भाग्य की बात नहीं थी, क्योंकि उसकी मति पूरी तरह से भ्रष्ट थी। मति और बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो अच्छे विचार सुनने पर भी उसका जो तात्पर्य वो निकलता है वो गलत निकलता है, वो दुर्दशा में उसका रूपांतर होता है। जैसे आजकल के आतंकवादी लोग होते हैं, वो बहुत सुंदर बहुत प्रगत शास्त्र का अनुभव करते हैं, सीखते भी हैं, लेकिन उसका प्रयोग गलत काम के लिए करते हैं, असत्य के लिए काम के लिए करते हैं, जगत विनाश के लिए उसका उपयोग करते हैं। उसी तरह से अच्छी बात सुनने पर भी अगर बुद्धि भ्रष्ट होती है तो फिर अच्छी बात सुनने का भी लाभ न होते हुए नुकसान हो जाता है। कुंभकर्ण का अस्तित्व उस प्रकार से था। कान तो थे, सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है वो, सबसे अधिक ज्ञान कर्ण से हम प्राप्त करते हैं, वही उसके इतने विशाल थे, फिर भी वो बहुत विनाशकारी मनोवृत्ति का था। उसके बाद में तीसरा पुत्र जो हुआ उसका नाम विभीषण रखा गया। ये व्यक्ति भगवान का भक्त था, श्री विष्णु का भक्त वैष्णव था। इसका नाम विभीषण क्यों पड़ा? क्योंकि उसको हमेशा एक चिंता बनी रहती थी। वो क्या चिंता थी? कि कोई भीषण कृत्य मेरे हाथ से ना हो, कोई वेदों के विरुद्ध कृत्य मेरे हाथ से ना हो, कोई अयोग्य कृत्य, कोई अकल्याणकारी कृत्य मेरे हाथ से ना हो, इसकी चिंता उसको हमेशा बनी रहती थी, इसलिए उसका नाम था विभीषण। और फिर चौथी कन्या प्राप्त हुई, उसका नाम रखा गया शूर्पणखा। उसका अर्थ क्या है? जिसके नाखून जो थे वो सुपड़े की तरह बड़े थे, इतने विशाल नाखून थे, बहुत तीक्ष्ण धारदार उसके नाखून थे, और वो बड़ी कुरूप थी, बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी, बड़ी कोपिष्ट थी, क्रोधित भाव था उसका हमेशा, और पाप से भरी हुई थी, इतना भयंकर उसका बेढब शरीर था, इतनी कुरूप थी वो, उसके दांत ऐसे बाहर आ रहे थे, ऐसे कर्रे झाड़ू की तरह उसके बाल थे, ऐसे नगाड़े की तरह उसका पेट था, कोई देखे ही डर जाए, स्त्री होने पर भी, बाल अवस्था में भी, युवा अवस्था में भी उसको बहुत देखकर डर जैसा महसूस होता था, ऐसी शूर्पणखा थी। फिर विश्रवा मुनि को एक और पत्नी भी थी, जिसको पुत्र प्राप्त हुआ विश्रवा मुनि के द्वारा, उसका नाम था कुबेर। और ये ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मणी के पुत्र, ये राक्षसी थी केकशी, लेकिन वो ब्राह्मणी थी, तो उसका पुत्र कुबेर देवता बन गया, ये लोग राक्षस बन गए, और कुबेर देवताओं का खजांची बन गया, तिजोरी का मालिक बन गया, सारे धन का नियंत्रण उसके पास में आया, बड़ा सद्गुण संपन्न था वो, और वो उसने लंका का निर्माण किया। अभी लंका का इतिहास सुनना भी जरूरी है कि लंका कैसे निर्माण हुई। एक मेरु पर्वत था, आप सब जानते हैं मेरु पर्वत एक बहुत ही अति विशाल अति प्रचंड पर्वत है, उसकी शोभा का वर्णन पुराणों में बहुत जगह पर आया है। ऊंचाई का नाम जहां आता है वहां पर मेरु पर्वत का नाम आता है, ऊंचाई की तुलना मेरु से की जाती है, जब किसी की वस्तु को भव्य विशाल ऊंचा बताया जाता है तो मेरु की तुलना दी जाती है। ऐसा यह मेरु पर्वत जो है ये पूरे भगवान के निर्माण में बहुत विशेष स्थान प्राप्त करता है। तो एक बार क्या हुआ, दो गंधर्वों में विवाद हुआ, वो ऐसे ही बैठ के विवाद कर रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं ट्रेन में लोग चलते हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं तो राजनीति पर चर्चा करते हैं, कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी पार्टी बुरी है, दोनों में से कोई कोई पार्टी में नहीं है, फिर भी अपना अपना मत व्यक्त करके वाद विवाद करके बड़ी बड़ी आवाज से ट्रेन में हवाई जहाज में बात करते रहते हैं। वैसे दो किसी अन्य देवताओं के बारे में ये दो गंधर्व बैठ कर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का रूपांतर विवाद में हुआ, और क्या चर्चा कर रहे थे कि वासुकी नाम का नाग अधिक बलवान है कि वायुदेव अधिक बलवान है। वासुकी और वायुदेव इस विवाद में उपस्थित नहीं है, दो गंधर्व दोनों का पक्ष लेकर वाद विवाद कर रहे हैं अधिक बलवान कौन है। तो एक गंधर्व वासुकी का गौरव करता है कि देखो वासुकी कितना बलवान है, जो समुद्र मंथन जब हुआ था तो वासुकी को दोरी बनाकर बुलाया गया था, उस मंदार पर्वत को मंथन करने के लिए, मंदार पर्वत का उपयोग करके समुद्र का मंथन करने के लिए वासुकी को बुलाया गया, फिर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तभी भी वासुकी को बुलाया गया, इतना महान उसकी उसका योगदान है। तो वायुदेव के बारे में दूसरे गंधर्व ने बखान करना शुरू किया कि वायुदेव इतने तेज हैं कि वो पहाड़ों को उखाड़ के ले जाते हैं, पूरे विश्व में व्याप्त हैं, वायु के बिना जीवन नहीं चलता है, 12 प्रकार का रूप धारण करके हर शरीर के कोने कोने में, हर जोड़ में वायु प्रवेश करके जीवन को चलाते हैं, 10 प्रकार के वायु हैं, 5 प्रकार के वायु हैं, अलग प्रकार का कार्य करते हैं। तो इतना विवाद बहुत प्रकोप में चला गया। तो एक जब भी ये जो विवाद था ये वायु के कानों में आया तो वायु को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे बल के सामने वासुकी के बल का गौरव किया जा रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम इसका प्रमाण लेते हैं। वायु ने कहा कि अभी मेरा भी श्रेष्ठत्व सिद्ध करना बहुत जरूरी है। वासुकी ने सोचा मेरा भी श्रेष्ठत्व सिद्ध करना जरूरी है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम मेरु पर्वत को, मैं वासुकी नाग 3 बार कस के घुमाऊंगा अपने आप को, और मेरु पर्वत के शिखर को कस कस के अपने आप को बांधूंगा, फिर आप आइए और अपने हवा के, अपने वायु के बल से मुझे, मेरा जो कसकर बंधना है उसको निकालने का प्रयास करेंगे, मुझे निकाल के फेंकने का प्रयास करें। इस प्रकार से वासुकी ने मेरु पर्वत को 3 बार कसा और वायुदेव ने तूफान हवा चलाकर उसको उखाड़ने का प्रयास किया। एक बात उसमें रह गई, मेरु पर्वत की आज्ञा लेना भूल गए। जिस पर्वत को कसकर अपनी वाद विवाद, अपने युद्ध को करने जा रहे थे, श्रेष्ठत्व को सिद्ध करने जा रहे थे, उसका तो अनुमति लिया नहीं उन्होंने। तो जितना हवा वायुदेव चलाने लगे उतना कसके वासुदेव वासुकी ने उसको बांधना शुरू किया। इससे मेरु पर्वत को बड़ा दर्द होने लगा। इतनी तूफानी शक्ति, इतनी कसने की शक्ति, इसमें उनको भयंकर वेदना हुई और भयंकर वेदना से उसने ब्रह्मदेव को पुकारा। तो ब्रह्मदेव ने आकर फिर कहा कि अरे तुम दोनों देवता इतने महान हो, अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हो, तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग विधायक कार्यों के लिए करना चाहिए, किसी के अनर्थ के लिए करना नहीं चाहिए, किसी को कष्ट प्राप्त हो इसलिए करना नहीं चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। इस तरह से परामर्श देकर ब्रह्मदेव ने वहां प्रकट होकर दोनों ही देवताओं को शांत किया। और जब कसा हुआ, 3 बार पेचकस दिया हुआ जो बंधन था उसको जब उन्होंने छोड़ दिया, तो वो हिस्सा जो 3 बार कसने की जगह से ऊपर था, उसमें 3 शिखर थे, वो हिस्सा मेरु से निकलकर समुद्र में गिर गया। उसमें 3 शिखर थे तो उसका नाम त्रिकुट पर्वत पड़ गया। और ये त्रिकुट पर्वत समुद्र में गिरा जो आज हमारे हिंदी महासागर में स्थित है, और उसी जगह को विश्वकर्मा ने, देवताओं के जो स्थापत्य शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने आकर लंका के रूप में विकसित किया। इस प्रकार से लंका का निर्माण हुआ। और ये लंका में इतना प्राकृतिक सौंदर्य था, इतना दिव्य ऐश्वर्य था, हर प्रकार के आनंद, हर प्रकार के आनंद के साधन लंका में उपस्थित थे। इसलिए लंका फिर विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए निर्माण किया, लेकिन कुबेर ने इस प्रकार से उसको खोल दिया कि सारे देवतागण अपने श्रम परिहार करने के लिए लंका में आने लगे, और वहां पर जैसे हम कहते हैं पिकनिक मनाते हैं, वैसे देवता लोग वहां पर श्रम परिहार, आनंद प्राप्त करने के लिए वहां पर आने लगे। तो इस तरह से लंका का निर्माण हुआ, और लंका जो है वो पूरी तरह से कुबेर के नियंत्रण में थी। तो इसके आगे का विवरण हम अगले सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा।